نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. لیسن تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ ایک ایک آیت کے اوپر جو ہے پورا دن بات ہو سکتی، مگر خیر آپ فکر نہ کریں، ہم مختصر اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جتنی بات ہم دیکھیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں کو آپ یاد کر لیں، یہ بیسک ہے، نچوڑ ہے پورے قرآن کا، اس کے ایک ایک لفظ کو اگر آپ نے اس کے جو گہرائی ہے جو میں باتیں آپ کو بتاؤں گی یاد کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آگے قرآن پاک میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلی بات، سب سے پہلا لفظ جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے زیادہ خوبصورت لفظ نہیں ہو سکتا تھا اللہ کے کلام کو شروع کرنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدو. بہت ہی کوئی زبردستی بات ہوگی اس کے اندر جو اس سے سٹارٹ ہوا اللہ کا کلام، الحمدو. پہلے دیکھتے ہیں حمد کا معنی کیا ہے، حمد کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے معنی اس کو اس کے میننگ میں تعریف تو لکھ لیا، لیکن حمد صرف تعریف کا معنی نہیں دیتا، بلکہ شکر اور تعریف دونوں اس میں شامل ہیں. حمد میں الشکر للہ اور المدح للہ دونوں ہیں، شکر بھی اللہ کے لیے، تعریف بھی اللہ کے لیے، ثنا بھی اللہ کے لیے. شکر میں کیا ہوتا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے کسی کا جب اس سے کوئی بھلائی آپ کو حاصل ہوتی ہے، جب کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے جواب میں شکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی سے کوئی بھلائی نہیں ملتی تو آپ اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے. آپ کو مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے شکریہ شکریہ، لوگوں کو کہتے چلے جائیں، نہیں، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک. اچھا، دوسرا تعریف، ثنا. حمد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ تعریف. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، حمد کو ایکچولی ہم کیپچر نہیں کر سکتے ان دونوں سے بھی، کیونکہ اس سے بہت اوپر ہے حمد کا معنی، ٹھیک ہے. میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کس طرح، میں پہلے یہ سمجھ لیں. تعریف لوگ بہت کرتے ہیں ایک دوسرے کی بھی، کسی کی ایسے ہی تعریف بھی کرنے لگتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خوش آمد، جھوٹی تعریفیں. جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں نا، کوئی اچھا نہیں بھی لگ رہا ہو پھر بھی ایک بڑی پیاری لگ رہی ہو، چاہے دل میں کہہ رہے ہوں کہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی. پھر ہم سوچتے ہیں جو بھی اسپیکر کوئی درس دے دینا، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اب اس کے پاس جائیں گے بڑا اچھا آپ نے درس دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کہنا ضروری ہوتا ہے، یہ تعریفی کلمات کہنے لازم ہیں، تو ہم ایسے ہی بس کہہ دیتے ہیں چاہے کسی نے کیسا بھی بولا ہو، اب کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے نا. تو اکثر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں تعریفیں یا تو ایسے ہی لوگ کر دیتے ہیں جیسے ایک رسمی سی بات سمجھ کے، یا کبھی جھوٹی تعریفیں بھی کرتے ہیں. مثلاً بادشاہوں کی اکثر ان کا خوش آمدی ٹولا ساتھ ہوتا ہے جو ان کی خوش آمد کے لیے ان کی تعریف کرتا رہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ کے جیسا تو کوئی ہے نہیں، یہ نہیں، اور اشعار کہتے ہیں، لیکن وہ صرف کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے. اصل میں دل میں ان کے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی تعریف ہو، دل میں دل سے کر رہے ہوں. تیسری تعریف ایک ایسی بھی ہوتی ہے جس میں دوسرے کا کوئی کمال نہیں ہوتا اور دوسرے کا کوئی حق بھی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی اس کی تعریف کر رہے ہیں. مثلاً ہے آپ کسی کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آنکھیں آپ کی، بیوٹیفل آئیز،
तो उसमें उसकी तो कोई भी तारीफ नहीं। उसने आंखें बनाई अपनी? नहीं। उसने अपनी आंखों को ये रंग दिया? नहीं। उसकी आंखों के ऊपर कोई उसका इख्तियार था अपना? नहीं। तो उसकी क्या तारीफ है फिर? उसकी तो कुछ तारीफ नहीं है। तो ये भी तारीफ होती है जिसमें दूसरे का कोई कमाल नहीं है, दूसरे का कोई इख्तियार नहीं है, दूसरे का कोई हक ही नहीं बनता। आप किसी की शक्ल की तारीफ कर रहे हैं, या उसकी जहानत की तारीफ कर रहे हैं, या उसके इल्म की तारीफ कर रहे हैं, या उसके माल की तारीफ कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी उसका कमाल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स हैं तारीफ की जो मैं आपको बता रही हूं। हम्द जो है ना, सुभान अल्लाह, वो इनमें से कोई तारीफ जो मैंने अभी आपको बताई, इनमें से कोई भी नहीं है। ना तो वो झूठी तारीफ होती है, ना वो किसी की चापलूसी करने के लिए तारीफ होती है, ना वो किसी के ऊपर किसी का हक नहीं भी है तो तब भी उसकी तारीफ हो रही है। इनमें से कोई भी चीज नहीं, ना ना हक तारीफ हो रही है। हम्द फिर क्या है? क्योंकि तारीफ तो हमने लिख लिया और तारीफें तो बहुत सारी हो रही है। मैं आप लोगों को कह दूं कि भाई आप सब जो है ना वो इंतहाई लायक और वो है, तो हो सकता है कि ये नहीं सही हो, है ना। तो हम इस किस्म की तारीफें सुन के यही समझते हैं यार हम्द भी शायद ऐसी ही तारीफ होगी। ऐसी तारीफ नहीं है ये। अलहम्द कैसी तारीफ है कि जिसकी तारीफ की जा रही है वो लायक है उसके कि उसकी तारीफ की जाए, वो मुस्तहिक है उस तारीफ का। ठीक है, उसमें झूठ नहीं है, उसमें मुबालगा नहीं है, और वो हकदार है उसका, डिजर्व करता है उसको। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि हम्द में और ये जो बाकी तारीफें ये दुनिया में हो रही, बहुत बड़ा फर्क है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं ये लफ्ज लेकर आया अलहम्दु, बहुत जबरदस्त लफ्ज है। बाकी जो मदह है, जो तारीफ, जैसे हम और अल्फाज बोलते हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई मदह में भी कोई ऐसा है कि कोई झूठी भी मदह होती है, वो लफ्ज नहीं अल्लाह लेकर आया, हम्द लेकर आया कि यानी अल्लाह तो लायक है तारीफ के। फिर दूसरा मैंने आपको एक और बताया ना, शुक्र, शुक्र से भी ऊपर कलिमा है। अब हम कह तो देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र अल्लाह का है। शुक्र एक एक शुक्र भी समझ ले छोटा रह जाता है हम्द के मुकाबले में। शुक्र करने का एक तरीका तो है अल्हम्दुलिल्लाह कहना, मगर अल्हम्द का एग्जैक्ट माना हम कहें कि शुक्र है अल्लाह का, ये नहीं है। क्योंकि शुक्र किस लिए होता है? शुक्र उस वक्त होता है जब कोई आपके लिए कुछ करे तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जब हम कहते हैं, ये कैसे उससे ऊपर हो गया कलमा, जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये कह रहे हैं अल्लाह तूने मुझे कुछ, अव्वल तो अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन अल्लाह अगर तूने मुझे कुछ भी ना दिया होता तब भी तू तारीफ के काबिल है। अल्लाह अगर तूने मुझे वजूद भी ना दिया होता, मैं एग्जिस्ट ही ना करती फॉर एग्जाम्पल, तब भी तू तारीफ के लायक है। तो शुक्र के अंदर ये आता है कि किसी ने आप पे एहसान किया हो तब आप शुक्र अदा करते हैं। हम्द में क्या है? इट डजेंट मैटर किसी ने आपके ऊपर एहसान किया है या नहीं किया है, तब भी उसकी हम्द है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मैं हूं या नहीं हूं, तेरी हम्द फिर भी है। तो शुक्र के साथ सिर्फ हम उसको नहीं कर सकते, शुक्र एक कंपोनेंट हो सकता है उसका, मगर टोटली उसका माना नहीं दे सकता। इसका मतलब है अव्वल तो अल्लाह ताला ने हर एक के ऊपर नेमतें की, लेकिन मसलन किसी पर नई नई नेमत को है तो क्या अल्लाह का शुक्र ही नहीं है या उसकी हम्द ही नहीं है? नहीं, तब भी हम्द है उसकी। अल्लाह, इट डजंट मैटर मैं हूं या नहीं हूं, या मुझे कुछ मिला या नहीं मिला। अव्वल तो इंसान होना, जिंदगी होना, या हर एक को, हर एक अल्लाह के मखलूक को अल्लाह ने नेमतें दी हुई, तो वो अल्लाह की दी हुई नेमतों में घिरा हुआ है। लेकिन अल्लाह अगर नहीं भी नेमत कोई मिली हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम, हमारी जिंदगी में होता क्या, हम कब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? नोट करें, कब कहते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह? जिस वक्त हमें कुछ मिलता है ना, अच्छा मिलता है, तो हम कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कुछ कुछ सही नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ हो गई, कोई मसला हो गया, क्या कभी तब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं कहते। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह में है ही क्या, अल्लाह कुछ भी नहीं तो तब भी तेरी हम्द है। سبحان اللہ, سو بیوٹیفل ورڈز, الحمدللہ. ابن قیم میں بڑی پیاری ایک بات کہی, کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ پیدا ہی ایسے کیے گئے ہیں کہ وہ حسن و جمال کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں. تو اسی لیے جب ہم کوئی خوبصورت سینری دیکھتے ہیں, کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی خوبصورت شکل دیکھتے ہیں, کوئی بھی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا دل متاثر ہوتا ہے اور ہم تعریف کرتے ہیں. تو فرمایا ابن قیم نے, جس کی مخلوق ایسی ہے کہ اس کی تعریف کیے بغیر رہا نہیں جاتا, وہ رب کیسا ہوگا. سبحان اللہ, وہ رب کیسا ہوگا بتائیں. تو الحمد کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. اچھا, اب الحمد کو جو میں نے آپ کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرایا, ال الگ لکھیں اور حمد الگ لکھیں اور بیچ میں پلس کا سائن بنائیں, از ایکول ٹو الحمد. ال کا بھی تو کوئی معنی ہوگا, حمد للہ بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن کہا گیا الحمد. ال الگ ہے, حمد سے الگ ہے نا, میں اس وقت سے آپ کو حمد کا معنی بتا رہی, ال کا تو نہیں بتا رہی. ال جب آ جاتا ہے لام استغراق, آپ کو نہیں بھی سمجھ آتا کوئی بات نہیں, تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ہر قسم کی جو سچی تعریف ہے, ہر قسم کی, یعنی الف لام لگ گیا, آل کائنڈز آف, ہر طرح کی جو وہ آگے حمد ہے جو سچی تعریف ہے. تو الف لام نے کیا کیا, سب الٹیمیٹ اور ہر قسم کی انکنڈیشنل تعریف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اب یعنی الف لام سے کتنا معنی میں فرق آ گیا نا لگنے سے, کہ آپ نے اب کہہ دیا کہ ساری کی ساری, تمام کی تمام, جو ہم کہتے ہیں نا سب تعریف, تو سب آیا کہاں سے؟ وہ اس الف لام کی وجہ سے آیا. اچھا, اب کس طرح سب کی سب تعریف اللہ کے لیے, یہ کس طرح ہوا؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی تعریف ہو رہی ہے, جتنی تعریف ہو رہی ہے, وہ سب اصل میں تو اللہ ہی کی تعریف ہے. وہ کیسے, وہ کیسے جی؟ مثلا ہم کسی کی شکل کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل میں ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ وہ شکل اس نے کیا خود بنائی ہے؟ نہیں, ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ وہ واقعی حسین کوئی صورت ہے, کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اس کا, اس بندے کا تو کوئی کمال نہیں. اصل تعریف اس میں بھی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. آپ کوئی بڑا خوبصورت برج دیکھتے ہیں, چاہے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی یاد کرتے اس وقت اور اللہ کی ہم نہیں بھی تعریف کر رہے, لیکن ہم جب وہ اس برج کی تعریف کر رہے ہیں تو اصل تعریف ہو کس کی رہی ہے؟ کس نے اس بندے کو سکل دی, کس نے اس کو یہ علم دیا کہ یہ اتنا خوبصورت برج بنائے, یہ ذہن, یہ سب اللہ نے دیا. تو اصل بیک گراؤنڈ میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. کس, کوئی بہت ذہین ہے تو اس کو ذہانت کس نے دی؟ اللہ نے. تو ہر قسم کی تعریف پھر کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے. اسی طرح آپ پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں, آپ ستاروں کو دیکھ کے ان کی تعریف کرتے ہیں, آپ چاند کو دیکھ کے اس کے اوپر کتنے شعر پڑے ہوئے, لوگوں نے کتنی نظمیں لکھی ہوئی, کس کے ساتھ کس کے ساتھ ملایا اس کو, وہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ وہ جو بنانے والا ہے, وہ نہ چاند کا کوئی کمال, نہ تاروں کا کوئی کمال, نہ خوبصورت درختوں کو اور سینری کا کوئی کمال, سارا کمال تو میرے رب تیرا ہے. تو سمجھ آ گئی نا ساری تعریف. یہ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا والعصر, ان الانسان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بے شک انسان خسارے میں. تو انسان میں سارے انسان آ جاتے ہیں, کیوں؟ الانسان آ گیا نا. تو اسی طرح الحمد آ گیا, تو سب کی سب. اچھا, اور حمد میں اور کیا چیز آ جاتی ہے؟ یہ ذرا اب جو ایڈوانس والے ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیں, باقی لوگ بے شک نہیں لکھے. وصف المحمودی بکمال محبتا وتعظیما. وصف المحمود, محمود کا وصف بیان کرنا, محمود کون ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے, اس کا وصف بیان کرنا, بالکمال, بکمال, کمال کے ساتھ, یعنی پرفیکشن کے ساتھ, محبتاً و تعظیماً, محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ, دو شرائط ہیں.
यानी जिसकी तारीफ की जा रही है उसकी तारीफ कैसे बयान करें कि वो परफेक्ट है, परफेक्ट अपने हर वस्फ में परफेक्ट है, यानी उसके जितने अस्माए हुस्ना उठा लेना उनमें वो परफेक्शन पे, अगर वो खालिक है तो परफेक्ट खालिक है, अगर वो राजिक है तो परफेक्ट राजिक है, अगर मालिक है तो परफेक्ट है, कोई नक्स कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है उसमें, अगर उसकी कुदरत है अला कुल्ली शाइन कदीर है तो मुकम्मल है, कामिल है, परफेक्ट है उसके अंदर, समझ आई बात, यानी बिल्कुल उसके अंदर कोई कमी नहीं। और मोहब्बत के साथ ये तारीफ बयान करना और ताजीम के साथ ये तारीफ बयान करना, समझ आई, मोहब्बत और ताजीम इसमें जरूरी है कि पूरी मोहब्बत के साथ आप ये अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये तेरी जो तारीफ है ये पूरी मैं मोहब्बत के साथ करूं और पूरी ताजीम के साथ करूं, समझ आए। तो जब हम ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो इसका मतलब है हम पूरी मोहब्बत के साथ कह रहे होंगे। अब हमारे पास तो ये रस्मी एक कलमा बन गया ना, लेकिन अदरवाइज इसके पीछे बड़ी मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हम्द होती ही वो है जिसमें मोहब्बत हो और ताजीम हो। तो स्टार्ट ही जब हमने किया तो मोहब्बत और ताजीम के साथ ही स्टार्ट किया, और अल्लाह ताला ने कुरान के स्टार्ट में ही वो इबादत बता दी कि जो अल्लाह को बड़ी पसंद है, और वो है उसकी तारीफ बयान करना। अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है कि उसकी हम्द की जाए, तो हम्द की अहमियत हमारे सामने आ जाती है कि हमें सबको हम्दो सना करते रहना चाहिए, जो जितना अल्लाह की हम्द बयान करेगा वो उतना ही अल्लाह का महबूब होता चला जाएगा, उतना ही अल्लाह का प्यारा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह को अपनी हम्द बहुत पसंद है। उतनी आप अल्लाह की मोहब्बत पाएंगे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, एक नाम क्या है, अहमद, अहमद का मतलब सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। ठीक है, तो हमने ये बता दिया अल्लाह हर किस्म के कमाल का, परफेक्शन का अकेला तू ही मुस्तहिक है, और ये नहीं कि तू किसी को कुछ देता है तो तब तेरी तारीफ है, तू अपनी जात में और अपनी सिफात में, जो तेरी सिफात है और तेरी जात है वो ही तारीफ के काबिल है, और तेरे अफाल जो हैं वो तारीफ के काबिल है, समझ आई। तो अल्लाह किन चीजों में तारीफ के काबिल है, अपनी जात में ही। अब हम अल्लाह की जात को ही नहीं समझ पाते, हमें नहीं पता ना अल्लाह की जात का, इसी वजह से हम उसकी वैसे तारीफ नहीं कर पाते जैसे वो लायक है तारीफ के, और हम उस तरह से उसका शुक्र भी अदा नहीं कर पाते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र हमें किस हद तक अदा करना चाहिए, उसकी सिफात का कमाल क्या है, कितनी परफेक्शन है, हमारी अक्ल वहां तक जा ही नहीं सकती, इसलिए हम उसकी सिफात की तारीफ ऐसे कर ही नहीं सकते जैसे करने के लायक है वो। इसीलिए हम कहते हैं ना सुभान अल्लाह, जो नबी अलैहि सलातो वसलाम तहज्जुद में सजदे में जाके कितनी प्यारी बात करते हैं, इतनी प्यारी बात करते हैं कि आप भी इसको नोट कर लें। वो प्यारी बात क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुभानक, अल्लाह तू पाक है, ला उहसी सना अन अलैक, अल्लाह मैं तेरी तारीफ बयान कर ही नहीं सकता, मैं अहाता कर ही नहीं सकता तेरी सना, अंत कमा असनई ताला नफसिक, ए अल्लाह तेरी तारीफ तो वही है जो तूने खुद अपनी तारीफ फरमा दी है, अल्लाह मैं कर ही नहीं सकता वैसी तारीफ, क्यों नहीं हम कर सकते, हम अल्लाह ताला की जात, उसकी सिफात, उसके अफाल, इन चीजों तक पहुंच ही नहीं सकते, हम तो उसकी मखलूक के बारे में ही लिखना शुरू करें ना, अल्लाह की बातें ही लिखना शुरू करें ना, तो क्या होता है, सूरह कहफ पढ़ते हैं ना जुमे को, क्या है फिर उसकी बातें लिखना शुरू करें तो, हाँ जी, समंदर स्याही बन जाए और जितने दरख्त जमीन पे वो कलमे बन जाए, और आप इन कलमों से लिखना शुरू करें, और आप ही नहीं अपने साथ सारी इंसानों को मिला ले, जिन्नात को मिला ले, फरिश्तों को मिला ले, सब मिल जाओ, लिखो 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 और समंदरों की स्याही खत्म हो जाएगी, कलम घिस घिस के टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे,
लेकिन अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। ऐसे रब की तारीफ कौन बयान कर सकता है? तो कौन ये कह रहा है कि अल्लाह मैं तेरी तारीफ नहीं बयान कर सकता, जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जानने वाले हैं और वो नबी अलैहिस्सलाम है, वो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के बारे में जानते हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह मैं कासिर हूं, अल्लाह मैं नहीं कर सकता तेरी तारीफ, जैसे तू अपनी तारीफ खुद कर सकता, अल्लाह मैं नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं। सुभान अल्लाह। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह कि उनकी जो, जब उनको कोई चीज देख के अच्छा लगता था ना, कोई अच्छी चीज लगती थी, तो क्या फरमाते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात। अल्लाह की तारीफ है, उसकी नेमत से सारी जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे काम है, वो मुकम्मल होते हैं। हाँ, और जब कोई चीज नागवार गुजरती थी, दिल पे अच्छी नहीं लगती थी, यानी नागवारी होती थी किसी चीज के साथ, तो क्या फरमाते थे? अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सीख लिया है कि जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अब हमने क्या सीखना है कि कोई चीज नागवार भी होती है, तबीयत को अच्छी नहीं भी लगती, हम नहीं भी चाहते कि वो हो, लेकिन वैसा हो जाता है, तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो क्या हर वक्त फिर या तो हमें कोई अच्छी चीज लग रही होगी या नागवार लग रही होगी। बच्चे मैस अप कर रहे हैं घर को, बच्चे तंग कर रहे हैं, तो कितनी दफा मुंह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कितनी दफा निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप गाड़ी के पास गए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही आपकी, तो क्या क्या मुंह से निकलता है फिर? क्या निकलता है मुंह से? अब मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती वो लफ्ज जो लोगों के मुंह से निकलते हैं, और एक स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन होता है। अल्लाह ताला हमें माफ करे, इस उस कलमे को छोड़ दे जो एस से शुरू होता है। ठीक है, ये ना हो कि मौत के वक्त भी यही कलमा आए जुबान पे। तो कोई नागवार चीज हो तब भी क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ठीक है, या इन्ना लिल्लाह पढ़ लें, लेकिन इसके सिवा नहीं कुछ और कहना। तो नागवारी में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, तो दिन में इसका मतलब सारा दिन तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ही कहेंगे फिर, इसलिए कि या तो कोई चीज हमारे लिए अच्छी हो रही होगी या तो कोई चीज खराब हो रही होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही हम कहते रहेंगे। सुभान अल्लाह, मोमिन की जुबान तो फिर तारी रहेगी ना अल्लाह के जिक्र से। हम ये सोचते हैं कि कैसे हमारे असलाफ हर वक्त अल्लाह का जिक्र वो कैसे करते होंगे, इसी तरह तो करते होंगे, वो कोई तस्बीहां लेके बैठ नहीं जाते थे जा नमाज में। अब हमने कितना कुछ सीख लिया, आऊज़ बिल्लाह सीखा, क्या है वो तो बहुत जरूरी है, हमें तो आज तक पता नहीं था। हमने बिस्मिल्लाह सीखा कि वो कितना जरूरी है, हमें नहीं आज तक पता था। और आज हमने क्या सीखा? अल्हम्दुलिल्लाह वो कितना जरूरी है, ये तो हमें आज तक नहीं पता था कि इतना जरूरी है कि हमें कोई चीज नहीं भी अच्छी लगे तो तब भी हम यही कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर देखें, जो पहला कलमा किसी इंसान ने बोला, जानते हैं वो क्या है? पहला कलमा यानी जब आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे ना, अल्लाह ताला ने उनका पुतला बनाया, तो रूह उनमें फूंकी, रूह उनके ऊपर से नीचे दाखिल हुई, तो जब रूह उनके नाक तक पहुंची तो उनको छींक आ गई, और जो पहले अल्फाज उन्होंने फरमाए वो थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये फितरत थी ना, उनको किसी ने सिखाया नहीं था, तो हम वो लफ्ज ही भूल गए जो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने कहे थे। आज छींक मारने पे भी ना याद रहे अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तो कितनी ये बुरी बात है। और इसको फिर हम ये देखते हैं कि जब कुरान भी इससे शुरू हो रहा है तो फिर इसकी और ज्यादा अहमियत हमें पता चलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने बड़े कलिमात हैं जिनको हमने हमेशा याद रखना। इसी तरह तिर्मिजी की एक रिवायत में आता है कि जब एक बंदे का बच्चा फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है तुमने मेरे बंदे का बच्चा उठा लिया। अल्लाह को खुद मालूम है, अल्लाह के हुक्म से ही हुआ, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वो कहते हैं हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है तुमने इसके दिल का जिगर का टुकड़ा उठा लिया, वो कहते हैं हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने फिर क्या कहा, हालांकि अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला सुनना चाहता है ये फरिश्ते क्या कहते हैं, मेरे बंदे ने क्या कहा। जैसे आपको कोई बात बड़ी अच्छी लगती है ना जब किसी की, तो आप फिर पूछते हैं बताओ फिर उसने क्या कहा था, हालांकि आपको पता होता है नहीं, फिर मुझे बताओ जरा तुम, अल्लाह ताला पूछते हैं वो क्या कहता था फिर, तो वो कहते हैं अल्लाह उसने तेरी हम्द की थी और उसने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, जब नागवार चीज होगी तो हम्द और फिर इन्ना लिल्लाह, कि अल्लाह कोई बात नहीं, ये चीज अगर खराब हुई तब भी अल्हम्द तेरे लिए। और अल्लाह ताला इसका जवाब फिर क्या देते हैं, ये असल में हमें बताना मकसूद है कि हमें पता चल जाए कि कोई जब ऐसे हो तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम रखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम क्या रखो, बैतुल हम्द, हम्द का घर। क्यों, इसने जब इसके ऊपर कोई सदमा टूट पड़ा तब भी इसने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। या ये बात आपको पता थी कि कितने प्यारी ये कलिमात है। फिर इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जिस बंदे ने खाना खा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत'अमनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा अत'आम मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन, यानी इसका मतलब क्या है, तमाम हम्द अल्लाह के लिए। मैंने आप सिर्फ तारीफ नहीं कहूंगी क्योंकि आप हम्द को समझें कि हम्द कितनी बड़ी चीज है, अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया और बगैर मेरी कोशिश और ताकत की ये रिस्क दी है, तो क्या फरमाया उसके लिए क्या खुशखबरी है, तो उसके तमाम पिछले गुना माफ कर दिए जाएंगे। तिर्मिजी की ये रिवायत है। हम कितने ही दफा खाना खाते हैं कभी याद ही नहीं रहता। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ किन किन जगहों पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी होती है, वैसे तो हर वक्त ही कहें लेकिन खास किन जगहों पे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स कोई पसंदीदा ख्वाब देखे तो वो अल्लाह की तरफ से है, तो जब अच्छा आप ख्वाब देखते हैं ना तो फिर क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जब आपको अच्छा ख्वाब आए तो आपने उठ के क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी शख्स को छींक आए तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जब कोई सो के उठे, आपको पता है ना नींद से बेदार होने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, उसमें भी क्या आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम हम्द अल्लाह के लिए जिसने मौत देने के बाद मुझे जिंदा किया है और उसी की तरफ मुझे उठना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला, एक और रिवायत में आता है, अल्लाह ताला बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है कि जब वो कुछ खाए तो अल्लाह की हम्द करे और कुछ पिए तो अल्लाह की हम्द करे। इसका मतलब खाने अगर साथ साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, एंड में भी कहें, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और अगर पानी पी रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो अल्लाह बहुत खुश होता है। हम सिर्फ कब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त हमें बहुत शदीद प्यास लगी हो फिर कोई ठंडा ठंडा पानी ला दे फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर याद नहीं कराने की जरूरत पड़ती और फिर रस्मी नहीं कहते, फिर वो दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाकी टाइम पानी पीते रहते हैं लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलता। और हम भूख लगने ही नहीं देते तो वैसे ही खाते रहते तो इसलिए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलता। अगर शदीद भूख लगी हो तब खाएं तो पता चले कि खाने की नेमत अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दी है, तो फिर तो जरूर अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। और अल्लाह ताला को जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हम जाहिर है अल्लाह को थैंक यू नहीं बोलते, ये जहालत की बात है तो हम अल्लाह को थैंक यू बोले, जिनको बिल्कुल ही अकल नहीं है वही इस तरह के काम करते हैं, थैंक यू अल्लाह नो, इसका मतलब कोई इल्म नहीं है इसके पास। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो उसको जजाक अल्लाह नहीं कहते, ये भी जिहालत की बात है। जब वो तो इंसानों को हम कहते हैं अल्लाह इसको बेहतरीन जजा दे, जब उनका शुक्रिया अदा करते, अल्लाह को हम क्या कहते हैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कोई नेमत हमें मिले, तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं
तो फिर अल्लाह ताला उस नेमत से अफजल नेमत अता फरमाता है और नेमत की हिफाजत फरमाता है और ज्यादा देता है उससे। और ये तौफीक मिल जाना ना कि इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ये भी बहुत बड़ी तौफीक है कि इंसान को मिल जाए। ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक मिले, वाकई दिल से कहने की, मोहब्बत के साथ और ताजीम के साथ, क्योंकि अल्हम्द होती ही मोहब्बत और ताजीम के साथ। ये नहीं कि इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहे लेकिन वैसे अल्लाह ताला से इतने गिले शिकवे हैं और शिकायतें हैं और बहुत दिल के अंदर एक नापसंदीदगी है कि ये काम क्यों हुआ, ये नहीं है ताजीम। तो अल्लाह की तारीफ के अलावा इंसान खुद अपनी तारीफ करें, खुद अपनी हमदो सना बयान करना शुरू कर दें, तो ये कोई पसंदीदा बात नहीं। हम तो ऐसे, हमारा खानदान ऐसे, हम हमारे अंदर ये खूबी, हमारे अंदर ये कमाल, हमारे अंदर ये पसंदीदा बात नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक नापसंदीदा है। तारीफ के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान अपनी तारीफ कैसे कर सकता है जबकि उसको हर चीज दी हुई अल्लाह ने है, तो तारीफ तो अल्लाह ही की होनी चाहिए ना। और कितनी नेमतें दी अल्लाह ने हमें, हम इन तउद्दू नियामत अल्लाही ला तुहसुहा, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिनो, गिन नहीं सकते लोगों, तो फिर शुक्र कैसे अदा कर सकते हो। फिर दिन रात भी तुम कहोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह तो शुक्र अदा नहीं हो सकता। इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या फरमाया था, या अल्लाह मैं तो तेरी एक नेमत का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता, बेशुमार अनगिनत नेमतों का शुक्र कैसे अदा करूं, या अल्लाह मैं तो तेरा शुक्र अदा ही नहीं कर सकता एक नेमत का भी। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, दाऊद जब तुमने ये समझ लिया ना कि तुम मेरा शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, तो ये भी मेरा शुक्र अदा करना। इंसान की तो ताकत ही नहीं है। ये हो गए अल्हम्दुलिल्लाह की कुछ बातें, अब अल्हम्द की बात। अच्छा अब आते हैं लिल्लाह की तरफ। ली और अल्लाह, ली। अच्छा यहां पर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर एक और बात लिख लें। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि एक अमर के सीवे से अल्लाह ताला फरमा सकते थे कि हम्द करो अल्लाह की, हम्द करो अल्लाह की, ये नहीं फरमाया, हुक्म नहीं दिया, बल्कि क्या फरमाया, अलहम्द, तमाम तारीफ है ही अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह ताला फरमाता हम्द करो अल्लाह की तो क्या होता, एक हुक्म होता, कोई हम्द करता और कोई नहीं करता, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया क्योंकि अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम करोगे ही हम्द तो फिर ही उसकी तारीफ होगी, वो नहीं इसका मोहताज है, ठीक है। दूसरा जो अल्लाह ताला ने यहां पर अल हम्द का लफ्ज लेकर आया ना, याद रखिएगा मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रही लेकिन सिर्फ एक बात थोड़ी सी समझ लेंगे ना तो बहुत इसकी ब्यूटी और ज्यादा आपके सामने आएगी। अलिफ लाम जब किसी लफ्ज के साथ लग जाता है ना तो वो इसम होता है, ठीक है। इतना तो सबको पता है इसम में जमाना नहीं होता, फेल जो होता है उसमें जमाना होता है, राइट। फेल में क्या जमाना होता है, या तो वो पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, इनमें होता है ना फेल। इसम में जमाना कोई नहीं होता। अल्लाह ताला फेल भी नहीं लेकर आया, नहमदुलिल्लाह भी नहीं लेकर आया, हम हम्द करते हैं अल्लाह की, क्योंकि फेल टेम्पररी होता है, इसम परमानेंट होता है। फेल टेम्पररी कैसे होता है, या तो वो पास्ट में होगा कि कभी की थी तारीफ, या आज कर रहा है, या करूंगा, राइट। लेकिन इसम क्या है, परमानेंट हो रही है अल्लाह की तारीफ, अल्लाह लायक है तारीफ के, कोई करे या ना करे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ही जात तारीफ के लायक काबिल, वो मोहताज नहीं है किसी की तारीफ का, तो समझ आ गई ना कि क्यों यहां पे फेल नहीं लाया गया बल्कि
इसम लाया गया। ओके, फेल किसी फाइल का मोहताज होता है, कोई करेगा तो वो फेल वाके होगा ना। मैंने आप मैं कहूँ खाना पकाया तो आप कहेंगे किसने पकाया, जाहिर है कोई काम हुआ तो कोई करने वाला होगा ना। अगर हम यहाँ पे कह देते कि भाई हम तारीफ करते हैं तो सारे तो हमारे ऊपर हो गया, हम तारीफ करेंगे तो हो गई, अगर हम नहीं करेंगे हमद तो हमद ही नहीं होनी। नहीं, अल्लाह को तुम्हारी नहीं जरूरत, इसलिए फैक्ट इफेक्ट आया है कि यहाँ पे इस सारी तारीफ है ही अल्लाह के लिए। और फिर लिल्लाह आया, अल्हम्दुलि रब्बिल आलमीन भी आ सकता था, ठीक है, बिस्मिल्लाह में तो अल्लाह का नाम आ चुका है, तो अल्हम्दुलि रब्बिल आलमीन नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह आया, क्योंकि अल्लाह का जो नाम है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, बाकी किसी और के लिए नहीं है, ना कोई भगवान, ना कोई ईसा अलैह सलाम, ना कोई उजैर अलैह सलाम, ना कोई ईश्वर, तो कोई जो जो बुद्धा, ना कोई इनमें से कोई अल्लाह नहीं है। कोई अल्लाह नहीं है, तो ये सारी तारीफ लिए अल्लाह की है। और मैंने आपको क्या बताया था, अल्लाह जो नाम है अल्लाह ताला का, वो उसका जाती नाम है, उसका सिफाती नाम नहीं है, जाती नाम है। और मैंने आपको इसके माने भी बताए थे, एक दफा उनकी दोबारा दोहराई कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ही का नाम ना समझा तो क्या समझा फिर, मैं किसको मानती हूँ, मेरा खुदा कौन है, मेरा रब कौन है, मेरा राजिक कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरा खालिक कौन है, सबका जवाब अल्लाह है, तो अल्लाह ही लफ्ज को ना समझे तो फिर समझा क्या आपने। हाँ, सारी जिंदगी गुजर गई यही ना पता चला अल्लाह लफ्ज का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था अली है यले यलहू, तो इसका मतलब क्या होता हैरान रह जाना, वो जात जो हैरान कर देती है। अली का एक और माना जजा फजा करना, यानी गिड़गड़ाना, रोना, जिसके सामने दुनिया रोती है, और एक अपने मसलों के लिए, परेशानियों के लिए उसके आगे रोता है। अलाहा का माना सकना है, सकून, यानी जिसकी जात, जिसका जिक्र सकून देता है, बंदा बेचैन होता है तो उसी का सिर्फ जिक्र ऐसा है जिससे सकून पा सकता है। लाहा यलीहू, इससे क्या निकलता है, बुलंद हो जाना, तो वो जात जो पूरी कायनात से बुलंद है, अर्श पे मुस्तवी है, और लाहा यलुहू छुप जाना, महजूब, छुपी हुई जात जिसको कोई देख नहीं सकता। अब इन्होंने क्या बनाए हुए हैं, कोई देवियां बनाई हुई हैं, कोई देवता बनाए हुए हैं, कोई दरगाहें बनाई हुई हैं, कोई कोई कब्र की पूजा कर रहा है, कोई दरख्त की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई किसी चीज की पूजा कर रहा है, अल्लाह वो जात है जिसको कोई नहीं देख सकता। ये जितने बाकी हैं इन सबको देख सकती हैं आंखें, मगर अल्लाह नजरों से महजूब है, छुपा हुआ है। वो अपना दीदार उसी वक्त कराएगा जब लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या समझ आया, जो जात हैरत जदा करते, जिसकी अजमत, जलाल, जिसकी कुदरत, जिसकी सारी सिफात ऐसी है, इंसान जितना जितना पढ़ता जाता है ना, हैरान होती जाती है उसकी अकल कि अल्लाह तो कैसा अजीम है, अल्लाह तेरी जात कैसी है। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, जो सुकून, जिसके आगे जजा फजा की जाती है। फिर अगली क्या बात बताई, जिस जात से सुकून हासिल किया जाता है। अगली क्या बात बताई, जो बुलंद जात है। फिर और क्या बात बताई, छुपी भी जात है। फिर वलाहा से भी है, यानी बच्चे का खौफ ज्यादा हो कि माँ की तरफ लपकना, तो सब मखलूक उसकी तरफ लपकती है जब बेचैन होती, जब खौफजदा होती है, जब मुसीबतों में होती है, परेशानी में होती है। और इलाह से भी है, यानी माबूद, ठीक है, तो सारे ही माने इसके अंदर है ना। तो जब हमने अल्लाह कह दिया ना, तो अल्लाह के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, उसके तमाम सिफाती नाम आ गए, कि जब हमने कहा अल्लाह तो गफूर कौन है, वो अल्लाह है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, اللہ کریم ہے، اللہ الرزاق ہے، اللہ البدیع ہے، ٹھیک ہے؟ تو سارے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب اللہ کے اندر موجود ہیں۔ جب ہم نے اللہ کہہ دیا نا تو سمجھ ہم نے سارے صفاتی نام لے لیے، جتنے اسماء حسنہ ہیں سب لے لیے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے کس نام سے کرایا؟ اللہ سے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام کتنا عظیم ہے اور کتنا اس میں پرفیکشن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہ لگایا جائے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اللہ رب العزت کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کہہ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دیں، اللہ کریم کہہ دیں، اللہ رحیم کہہ دیں، اللہ رحمان کہہ دیں، لیکن اللہ میاں نہ کہیں، یا اللہ ایسا کوئی اور چیز جو ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو اللہ کے نام کے ساتھ نہ استعمال کریں ہم۔ گو کہ ہماری زبان پہ چڑھ چکا لیکن کوشش کے ساتھ جب بھی یاد آئے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العزت۔ تو اب ہم دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نام بھی کتنا زبردست ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سٹارٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمد کس کے لیے؟ للہ۔ اب نہیں کوئی اور کسی کو سمجھ سکتا کہ الحمد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، الحمد فلانے کے لیے، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، کسی اور کا نام اللہ ہے ہی نہیں، ہے نا؟ توحید آ گئی یہاں پہ، پوری توحید اس جگہ پہ آ گئی۔ اس سب تعریف کے لائق مستحق وہ ذات ہے جس میں ہر قسم کا کمال ہے، پرفیکشن ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ اکیلا اس کا مستحق ہے۔ للہ، لی جب آیا نا، لی کا بھی آپ کو ترجمہ بتا دوں، لی کا ایک معنی لائق، اس لائق ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ لی کے بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں، تو ایک معنی کیا ہے، یعنی اس کے لائق ہے، یعنی اس کا حق ہے، لام استحقاق کہتے ہیں اس کو، مستحق ہے وہ، وہ مستحق ہے اس کا، کوئی اور نہیں مستحق، وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو، کس کو؟ الحمد کو۔ ٹھیک ہے، اور لی اختصاص کے لیے بھی ہے، خاص ہونا، یعنی خاص اللہ کے لیے، مخصوص ہے اللہ کے لیے، اسپیسیفکلی فار اللہ۔ ٹھیک ہے، اور کیا چیز ہے، کیا چیز اسپیسیفکلی فار اللہ ہے، یا اس کا حق ہے؟ حمد۔ وہ حمد جو کیسی ہے، ایک تو ساری کی ساری، دوسرے میں نے آپ کو بتایا یہ سب ہے، تو مستقل، ٹھیک ہے، دوام ہے اس کے اندر، ٹیمپرری نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی ہم دو کلمات سے آگے نہیں گئے، اور اس سے بھی آگے ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، بہت سارا کچھ ہے اس کے اندر، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا، تو میں نہیں ہوں کہ آپ لوگ بھی تھک جائیں، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ رب العالمین، رب، ایک ایک لفظ کو آپ دیکھیں، ایک ایک لفظ خوبصورت ہے۔ رب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، بھلے لوگ کہتے رہے ہیں رب، سکھ لوگ بھی رب رب بہت کہتے ہیں، لیکن جو رب کے معنی آج آپ سمجھیں گے نا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ کسی اور کے اوپر آپ یوز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو اس کے اندر معنی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، جب ہوں گے ہی نہیں تو پھر رب ان کے لیے کیسے یوز ہو سکتا ہے؟ نمبر ون معنی لکھیں، مالک، ماسٹر، آقا۔ ٹھیک ہے، آقا کیسے؟ جب ہم آقا کہتے ہیں، ماسٹر کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو کسی اور کا خیال آتا ہے، غلام کا آتا ہے نا، آقا اور غلام، رائٹ؟ جیسے میں کہوں بیوی، تو فوراً کیا مطلب آتا ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیوی اس کا ایک شوہر بھی ہے، نہیں، بیوی کا مطلب ہی ہے کہ اس کا شوہر ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، ماں، یہ ماں ہے، تو اب کہنے کی ضرورت ہے اس کے بچے ہیں؟ نہیں، ماں کا مطلب ہی ہے کہ اس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ آقا کہتے ہیں تو کیا سمجھ آتا ہے؟ اس کا کوئی غلام بھی ہے، एक तो ये बात अच्छी तरह समझ, मास्टर, आका, मालिक, मालिक भी कह सकते हैं, आका भी कह सकते हैं। तो मालिक का कोई ना कोई कोई मिल्कियत होगी, कोई उसका गुलाम होगा, या आका कहें तो उसका कोई गुलाम होगा। तो इसी पहले मीनिंग, जो अभी तो मैं आपको और भी मीनिंग्स बताऊंगी, पर पहले लफ्ज से ही आपको पता चल गया कि अल्लाह जो रब है उसके कोई गुलाम है। और वो गुलाम कौन है कि इंसान को भी समझ आन जानी चाहिए कि जब मैंने कह दिया कि अल्लाह रब है मेरा, अल्लाह ताला की, अब ये आगे ना रब्बुल आलमीन, अर्रहमान, अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ये चार अल्लाह ताला की समझने सिफात आ गई हैं। कौन कौन सी, अब बताया गया ना अल्लाह कौन, अल्लाह कौन, अल्लाह अल्लाह का तारुफ कराओ, कौन है अल्लाह जिसकी तुम कह रहे हो कि सारी अलहमद है, वो अल्लाह कौन है? तो आप कहते हैं वो अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह वो है जो रहमान है, वो अल्लाह वो है जो रहीम है, वो अल्लाह वो है जो मालिक यौमिद्दीन है। तो अल्लाह का तारुफ है ये। तो जब आपने कह दिया रब, अब आपको समझ आ गई रब का माना तो है आका, तो सबसे पहले ही आपसे ये मनवा लिया गया कि जब तुमने अल्लाह को आका अपना मान लिया है तो फिर इसका मतलब तुम गुलाम हो। और यही बात हमें समझ नहीं आती सारी जिंदगी कि हम किसी के गुलाम है भाई, हम किसी के गुलाम है, हम आजाद नहीं है। गुलाम क्या होता है? वो आजाद तो नहीं होता, उसकी अपनी मर्जी होती है गुलाम की। नहीं, कभी आपने गुलामी की बातें पढ़ी हैं? गुलाम कैसे होते थे? उनकी अपनी मर्जियां होती थी, वो क्वेश्चन कर सकते थे अपने आका को कि तू ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये हुक्म तुमने क्यों दिया? नहीं, उसकी कोई मर्जी नहीं होती थी। मालिक जो हुक्म देगा गुलाम वही करता है। तो पहली आयत में ही आपको मानना होगा कि हम गुलाम हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आलमीन में क्या क्या आ गया, आलमीन में क्या क्या आ गया, आलम, आलम सारे यानी जहान, जहान। अब आप इसके अंदर, इसमें बहुत सारी और लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो सकती है, मगर सिर्फ आपको एक बात बता दूं, ये आलम में वो सब कुछ आ जाता है जो सिवाय अल्लाह के है। ले आप गिनने लगे सिवाय अल्लाह के क्या क्या है, कई चीजों को तो हम जानते हैं, कईयों को तो जानते ही नहीं। हमें क्या पता दूसरे प्लैनेट्स में कौन है क्या है। कभी वो कहते हैं एलियन है बैठे में, वो जी एलियन आ गए, फलां हो गया। बेचारे इंसान जो है वो दूर दूर के सितारों सैयारों की खोज लगाने की कोशिश करते हैं, वहां पे तो नहीं कोई मखलूक है। हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो फरिश्तों का भी नहीं पता कि किस तरह से वो, क्या उनकी तादाद है, किधर किधर हैं वो मौजूद, इधर इस वक्त यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं, किधर ऊपर नीचे जा रहे हैं, हमें नहीं पता ना। और कितनी अल्लाह की मखलूक इसी जमीन पर है जिस पे हम रहते हैं और हमें उसका इल्म नहीं है। अब साइंसदानों को भी थोड़ा सा इल्म आया, हम जो आम लोग हैं जिसको, जिनको इतनी साइंस का भी नहीं पता, उनको तो बिल्कुल ही नहीं मालूम। ठीक है, कितनी मखलूक समुद्रों के नीचे है, रोज डिस्कवरीज होती हैं। आप डिस्कवरी चैनल पे देख लें, वो आपको दिखाते हैं जी ये हमें पता चल गया, आप फलानी जगह पे है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि इंसान की अक्ल भी दंग रह जाती कि अल्लाह ये भी तेरी मखलूक है यहाँ पे। कौन कौन से जंगलों में जाके वो दिखाते हैं, कौन कौन सी जगहों पे, एक दफा मैंने देखा तो मैं खुद हैरान हो गई कि अल्लाह अकबर, ऐसी तो चीजें हमने कभी भी ना देखी थी। हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे नजदीक अल्लाह की मखलूक क्या है, जमीन की, जमीन के ऊपर रहने वाली खुश्की वाली, वो जो हम जू में देखते हैं, बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं वहां पे दिखा देते हैं, बस ये अल्लाह की मखलूक है, ये जानवर हो गए, ये परिंदे हो गए बस। नहीं, ये नहीं है काफी। इसी जमीन के ऊपर, मैं समंदर की नहीं बात कर रही, खुश्की के ऊपर इतनी अल्लाह की मखलूक है कि आप खोज लगाने लगे तो जिंदगी गुजर जाए। फिर समंदरों के नीचे कितनी है, जाहिर है इस जमीन का 2/3, 2/3 जो है ना वो समंदर है, पानी है, पानी के नीचे जाहिर है मखलूक ज्यादा है, उसकी गहराइयों को तो पानी समंदर इतने गहरे हैं बाज जगह पे कि उनके अंदर पहाड़ खड़े हो सकते हैं, इतनी गहराई है। ये साइंस ही बताती है। और क्या क्या मखलूक है वहां पर हम नहीं जानते।